Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीवादरायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदये जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ॐ नमो भगवते तस्मै यतयेतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मिन्निदं जतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवां। यः स्वात्मनीदं निजमाय अर्पितम् क्वचित् विभातम् क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स्वयात्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमिते स्कृतश्नश लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु समास्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न जस्य देवारिषयः पदं विदुः जन्तुः पुनर्कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरात्ययानो क्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः। दो श्लोक रह गए थे दूसरे अध्याय को। नमामि मे ज्ञातया तुरं गजः कुतः करुण्यः प्रभवन्ति मोचितम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृत तं यामि परं परायणम् Yakaschaneso balinanta koragat prachanda vega davidhavato bhrisham bhitam prapannam paripati jadbhayat मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि श्री वादरायणी उवाच एवं व्यावसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदये जजाप परमं जाप्य श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में महाराज परीक्षित के प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान की इस लीला को सुना रहे हैं। चौथे मनवंतर में हरि नामक अवतार लिया भगवान ने और गजेंद्र की रक्षा के ग्रह से छुड़ाया गजेंद्र। किस प्रकार गजेंद्र ग्रह के बंधन में फंसे थे इसकी कथा कल हो चुकी है। सुखदेव गोस्वामी कथा कहते कहते यह कहे कि एक सहस्र वर्ष तक युद्ध हुआ गजेंद्र ग्रह में और वह युद्ध देखा जा रहा था देवताओं के द्वारा। आकाश में विमानों पर चढ़कर देवता इस विचित्र युद्ध को देख रहे थे। ऐसा अब तक वे नहीं देखे थे कि दो प्राणी 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे और फिर भी जीवित रहे, बल बना रहे, ये अद्भुत घटना थी। ये सारे देवता देख रहे थे लेकिन कोई भी गजेंद्र जी को बचाने नहीं आ रहा था। एक प्रकार से देवताओं पर सुखदेव गोस्वामी व्यंग भी कर रहे हैं कि ये लोग तमाशा देख रहे थे, बेचारे गजेंद्र संकट में पड़े हैं और इन लोगों को देख करके सुख हो रहा है, देख रहे विचित्र आश्चर्यचकित हो रहे थे, विस्मय हो रहे थे कि वो कैसा अद्भुत युद्ध है। वे भी 1000 वर्ष तक देखते रहे, बीच बीच में जाते होंगे अपने घर खाती करके आते होंगे देवता लोग, लेकिन वे देखते रहे, मैच देख रहे थे। जब 1000 वर्ष के बाद गजेंद्र का मनोबल, देह बल और इंद्रिय बल व्यय हो गया, कितना व्यय, महान व्यय सुखदेव गोस्वामी का, ततः गजेंद्र से मनोबल जैसा कालीन दीर्घ अभूत महान व्यय, बहुत अधिक व्यय हो गया। वैसे गजेंद्र बहुत बलवान थे और उनका शरीर बहुत बड़ा था, अतः वे क्षीण होने पर भी अन्य हाथियों से ज्यादा थे क्षीण होने के बाद भी, परंतु उनकी शक्ति बहुत व्यय हो गई क्योंकि विकृष्यमाण से जले वसीदत, वे जल में थे और उसके बाद ग्रह के द्वारा बारंबार खींचे जा रहे थे, पछाड़े जा रहे थे, इसलिए शक्ति क्षीण हो गई। परंतु ग्रह की शक्ति ज्यों की त्यों रही बल्कि बढ़ती गई, क्योंकि वह अपने घर में था, जल में था और जल ही उसका आहार भी है, तो आहार भी प्राप्त करता रहता। जब गजेंद्र ने देखा कि ये बड़े बड़े गजराज हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बेचारी हथिनियां कहां से कर पाएंगी, तो ये सोच करके उनके पास उन्हें अद्भुत बुद्धि प्राप्त हुई। उस बुद्धि की चर्चा दो श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, गजेंद्र के उद्गार से। न मामिमे ज्ञातया तुरम गजः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति नोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातरावृत ह्यहं च तं जामि परं परायणम्। बुद्धि है तो उस बुद्धि से सोच रहे हैं कि ये बड़े बड़े गज मेरा उद्धार नहीं कर पाएंगे। न विमोचितुम प्रभुवंती समर्था भवंती, ये हमारा विमोचन करने में समर्थ नहीं हो रहे। तो कुतः करीण्य, कुतः करीण्य प्रभुवंती, फिर ये करीणिया हथिनिया क्या करेंगे। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि गजेंद्र को छुड़ाने के लिए जो उनके साथी हाथी लगे हुए थे वे सब थक गए और वो छोड़ दिए, तो अपना खाना पीना सब देखे और जंगल में जाकर के खाएंगे पिएंगे। मर रहा है तो अब क्या करें, बेचारे की शक्ति नहीं है, ये समर्थ नहीं। परंतु ममता धिक्के के कारण हथिनियां बेचारी लगी हुई थी, अपनी पत्नियां लगी हुई थी। तो गजेंद्र कहते हैं कि जब ये बड़े बड़े हाथी हमको नहीं छुड़ा पाए तो कुतः करेंगे प्रभुवंति मोचितु, मुक्त करने में ये हथिनियां कहां से समाप्त होंगे। यह साधारण बंधन नहीं है, यह ग्राह का रूप है वास्तव में, परंतु यह विधाता का पास है, यह ईश्वर का पास है, भगवान का पास है। बंधन ग्रहण पाशेन विधातु, विधातु पाशेन आवृत, मैं विधाता के बंधन में हूँ, पास में हूँ, जिसका रूप है ग्राह, उस पास का ही वर्णन कर ग्रहण पाशेन, ग्राह रूपी पास मैं बंधा हुआ हूँ। फिर भी मैं इस बंधन दशा में भी परंपरायण जो सबके आश्रय है, परमेश्वर है, उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। और न मैं छुड़ाने का प्रयास करूंगा और न किसी पर भरोसा करूंगा। अब तक गजेंद्र को आशा थी कि ये हाथी अपने में जोर लगा करके हमारा उद्धार कर देंगे। हाथी भी थक गए, हथनियां भी थक गई, स्वयं गजेंद्र की पूरा पूरा थक गए, तब इनको यह अलौकिक अद्भुत बुद्धि प्राप्त हुई, भगवान पर सहज विश्वास और भगवान की शरण लेना। अहम तो तम यानी परम परायण, अहम तम परम यानी परम का शरण, सर्वेश्वरेश्वर पुरुषोत्तम भगवान की मैं शरण ले रहा, वही हमें इस बंधन से मुक्त कर सकेंगे। यह बुद्धि आई गजेंद्र को। यह कश्चनेशो बलिमंत कोरगा प्रचंड वेगादभिधावतो भृशं पीतं प्रपन्नं परिपाति जद्भयात् मृत्युः प्रभावत्यरणं तमीमहे। ये प्रश्न होता है कोसव जस शरणम यासी, वो कौन है जिसकी शरण ले रहे हैं आप। बल्कि गजेंद्र के मन में ये प्रश्न उठे, कोई पूछे किसकी शरण आप ले रहे हैं, तो कहते यह कश्चन ईशो, यह कश्चन ईशो जो कोई ईश्वर है। यह क्वेश्चन ईश्वर, क्वेश्चन का अर्थ कोई ईश्वर है, इस जगत का निर्माता, इसका पालन करता और इसका नियंता, इसको कंट्रोल में रखने वाला कोई है। क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं, क्या हमें पता नहीं है कि वो कौन है। है पता, लेकिन क्वेश्चन का यह अर्थ है अविर्वचनीय महिमा विशिष्ट, जिनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है, वे परम ईश्वर हैं, मैं उन्हीं की शरण लेता हूं। कैसे जानते हैं कि वे प्रभु आपकी रक्षा करेंगे? मान लीजिए प्रश्न उठे तो कहते हैं हाँ वे रक्षा करते हैं, उनकी लीलाओं द्वारा यह बात सिद्ध है। परम बलवान काल रूपी सर्प के द्वारा जो लोग भयभीत है, इस तरह से वर्णन करें, बलिनः अंत कोरगात, यह काल रूपी सर्प अंत अंतम करोति इति अंतक, जो सबका अंत कर दे, सबका विनाश कर दे, उसको अंतक कहते हैं काल। यह काल एक बड़े सर्प की तरह है, काल सर्प, और यह सबको निगल रहा है, खा रहा है, नष्ट कर रहा है। प्रचंड वेगा दभिधावत भीषण, इसका प्रचंड वेग है और यह सब ओर दौड़ रहा है। अभिधावत अभिधावत अर्थात सभी प्राणी मृत्यु के अधीन है, कोई ऐसा स्थान नहीं है और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मरेगा नहीं, सर्वत्र मृत्यु की पहुंच है। तो यह काल सर्प अभिधावत यह दौड़ता रहता है, इसके भय से त्रस्त होकर के, इसके आक्रमण से त्रस्त होकर के कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति प्रपन्न भीतन पहले डरता है और प्रपन्न उस ईश्वर की शरण लेता है, तो वह ईश्वर परिपाति जद भयात, जद भयात काल सर्प से जो परिपाति सब तरह से रक्षा करते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करे। यह विचार आया, यह बुद्धि आई, यहाँ तक मृत्यु प्रभावती अरणम तमिल ही, उन्हीं की आज्ञा से मृत्यु प्रभावती, काल सर्प को भी अभिधावत कहे और मृत्यु को भी अभिधावती प्रभावती प्रकर्षण धावती। मृत्यु सर्वत्र है, सबकी मृत्यु होती है, तो भगवान की आज्ञा से अनुशासन से ही मृत्यु सबको मारता है सर्वत्र। मृत्यु प्रभावती, प्रभावती का अर्थ यह नहीं है कि एक जगह मृत्यु है और दौड़ दौड़ करके सब जगह अमेरिका में रशिया में भारत में सब जगह मारा करता है, ये ऊपर ब्रह्मांड में ऊपर ब्रह्मलोक में या पाताल में सब में। प्रभावती का अर्थ है सुंदर ऐसा लग रहा है प्रकर्षेण धावती, जो बहुत तेज गति से दौड़ता है मृत्यु, दौड़ता क्या है, धावन धावन नहीं करता, वास्तव में रहता ही है सबके साथ। कबीरा गर्भ न कीजिए काल गए कर केस, न जाने कितमारी है क्या घर क्या परवेश। कबीरदास जी ने कहा है कि गर्व मत करो, मृत्यु केस को पकड़ करके रखा है, चोटी पकड़ करके रखा है, और न जाने कित मारी है, कहां ये मारेगा, परदेश में कि देश में कि घर में कि आकाश में जमीन पर या जल में, कुछ पता नहीं, न जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। यह मृत्यु सबको मार रहा है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहा है, मारता जाता है, ऐसा लगता है कि अपने लोक में यह मृत्यु रहता है, वहां से बहुत तेज गति से दौड़ दौड़ कर मारता रहता है, जैसे विद्युत धारा या सूर्य का प्रकाश जितना गति से चलता है उससे भी ज्यादा स्पीड से मृत्यु जा जाकर के सबको मारता है। एक सेकंड भी देरी नहीं करता है, भगवान जो तय कर दिए हैं कि इस सेकंड पर मारना है इस व्यक्ति को, उसमें एक सेकंड की देरी नहीं हो सकती है। यही संसार में तो देर हो जाती है, कई रेलवे टाइम टेबल है, टाइम बनाया गया है, रोज लेट। यह कोई अनुशासन नहीं है, न कोई अनुशासन रखने वाला है, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कोई भी लेट नहीं है। जैसे भगवान कपिलदेव कहते हैं कि मद भयात बात बात सूर्यस्त पति मद भयात, ये सूर्य मेरे भय से तप्त होता है, प्रकाश देता है। तो भगवान के भय से सूर्य बिल्कुल समय पर उठते हैं, उनका नियम बनाया गया है इस समय आपको यहाँ पर हो जाना है। उनकी कुछ है, उनका कुछ लीक है, रेखा है, तय किया गया अपने ऑर्बिट पर रह करके और इतना स्पीड से आपको चलना है। उस स्पीड में थोड़ी भी कमी बेसी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि जल्दी जा करके और फिर अंधकार कर दे इस संसार में, आगे चले जाए, एकदम सेम स्पीड में चलना है। ईश्वर का अनुशासन है, सूर्यस्तपति मद भया, मद भया सूर्यस्तपति, वर्ष इंद्र दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भया, इंद्र वर्षा करते हैं मेरे भय से और नहीं वर्षा भी करते हैं उन्हीं के भय से। भगवान ने कहा ऐसा नियम बनाया गया, ऐसे वर्षा करो, इसे मत करो, इसे करो, इसे मत करो, जैसा कहा है वैसा वो करते हैं। तो सर्वत्र है इस प्रकार की बुद्धि आना, यही ठीक बुद्धि है जो गजेंद्र के हृदय में बुद्धि आई, ये विचार आया। अरणम तम ई बही, अरणम मतलब शरणम, बुद्धि शरण स्वरूप, आश्रय स्वरूप परमात्मा को मैं ई बही शरणम गच्छे मैं क्या था, शरण में जा रहा हूं, उन्हीं के शरण में जा रहा हूं, यह विचार आया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परम जाप्यम प्राग्जन्मन्यन शिक्षितम्। इस प्रकार कृत निश्चय गजेंद्र ने निश्चय किया और अपनी बुद्धि से अपने मन को हृदय में समाहित करके पूर्व जन्म में सीखे हुए इस स्तोत्र का पाठ करने लगे, जजा को जपने लगे। पूर्व जन्म में सीखे थे इस स्तोत्र को, जो ये स्तोत्र आएगा इस जन्म में तो केवल घास खाना, हथिनियों के साथ रहना, इसके अलावा कोई जाप कीर्तन भजन तो कुछ किए नहीं थे, कुछ नहीं किए। जब से जन्म हुआ हाथी के शरीर में तब से बस केवल विषय भोग, खान पान, लड़ाई झगड़ा अन्य जंगली जानवरों से यही करते थे। कभी ना भगवान को प्रणाम किए थे, जप आदि करने का तो प्रश्न ही नहीं था, उस हाथ में माला झोली पकड़ ही नहीं सकते। हाथी के शरीर में यदि जो हाथी का सूर होता है उसी को हाथ कहते हैं, हाथ हस्त, तो हस्त से वो युक्त होता है इसलिए उसको हस्ती कहते हैं और उसी को हिंदी में हाथी हाथी कहते हैं, हाथ वाला हाथी, जो सूर है उसका हाथ माना जाता है। लेकिन इस शरीर से जप करने लगे और अंत में अपने सूर से भगवान के लिए कमल अर्पित किए, इस हाथी के शरीर में इतनी ही भक्ति किया है। पर इसके पहले किए थे बहुत प्राग जन्मनी अनुशिक्षित, प्राग जन्मनी जब इनका नाम इंद्रद्युम्न राजा था उस शरीर में इन्होंने भगवान की भक्ति किया, खूब किया था। यहां तक कि जवानी में ही राज्य छोड़ करके वन में चले गए थे, यह इनके भक्ति का सूचक है। वास्तव में कोई राजा अपना राज पद छोड़ करके वन में जाएगा? आजकल के छोटे छोटे जो राजा हैं वन में जाने के बाद तो क्या है, राजधानी छोड़ करके बड़े बड़े टाउन में भी नहीं जाते, छोटे छोटे टाउन गाँव देखने भी नहीं जाते। लेकिन राजा इंद्रदुम्न जो दक्षिण भारत के राजा थे, ये राज्य छोड़ करके वन में चले गए। यद्यपि उनका धर्म था अतिथि सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, लेकिन उस स्वधर्म का त्याग करके, बड़ाश्रम धर्म का त्याग करके भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चले गए थे। खूब भजन किए थे, इस स्तोत्र का जप किए थे, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम अभ्यस्तम, पूर्व जन्म में इस स्तोत्र का खूब अभ्यास किए थे। अनुशिक्षितम का अर्थ है पढ़ना, अभ्यास करना। नमो भगवते तस्मै यतायेत चिदात्मकं पुंसायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। इस प्रकार से पूरे स्तोत्र को बहुत पढ़े थे, बार बार पाठ किए थे, यही अभ्यास भक्ति की शिक्षा का यही मतलब है। बारंबार भगवान के नाम का उच्चारण करना, गान करना, भागवत पढ़ना, सुनना, भगवान को प्रणाम करने का अभ्यास रखना हमेशा। अभिआस, अभी का अर्थ होता है अभी तो, और आस का अर्थ होता है आसन, बैठना। जब सब ओर से कोई व्यक्ति किसी विशेष काम पर ही लगा रहता है तो इसको उस कार्य का अभ्यास कहा जाता है। घूम फिर करके बस वही करना, वही करना, वही करना। तो महाराज इंद्रदुम्न इस स्तोत्र का पाठ खूब करते थे, भगवान में मन लगा था, भक्ति कर रहे थे। तो प्राग जन्मनि अनुशिक्षित, भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि मान लीजिए कोई आपकी भक्ति करता है, योग कर रहा है, योग मतलब भक्ति योग, और वह बेचारा पूर्ण सफलता नहीं पा पाया, आपको नहीं पाया, और इधर संसार भी छोड़ दिया, इधर भी कोई अच्छा काम धंधा नहीं किया, न इधर का रहा न उधर का रहा, अपक्व योगी। पक्का योगी तो वो है जो भगवान कृष्ण को पा जाए, साधना करके भगवान को पा गया, और नहीं तो भगवान को पूरा पूरा भूल करके भोगों में मस्त रहे, दोनों में एक तो होना चाहिए ना। लेकिन अर्जुन जी का प्रश्न है कि वो कैसे प्रश्न है, अरे भैया धीरे से बोलो, मतलब स्पीड धीरे से। काम गतिम कृष्ण गच्छति, यदि कोई जति है, जति का अर्थ है यत्न करने वाला भक्त, तो भक्त भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहता है, परंतु योगत चलित मानस, योग से उसका मन चलायमान हो गया है, चाहे भोगों के आकर्षण से अथवा रोग आदि से किसी कारण से भक्ति योग छूट गया उसका, तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होती है, गति मतलब प्राप्तव्य, उसको क्या मिलता है। हमें तो ऐसा लगता है कि उभय भ्रष्ट हो गया, न इधर का रहा न उधर का रहा। तो भगवान कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति गच्छति। प्रिय अर्जुन, कल्याण कृत जो भक्ति योग कर रहा है, कल्याण कार्य कर रहा है, कल्याण कार्य भक्ति हुआ, वह कभी भी दुर्गति में नहीं जाता है। अगर कदाचित भक्ति योग से भ्रष्ट हो गया तो पहला लाभ तो उसे ये होता है कि वह उच्चतर लोकों में जाता है, स्वर्ग में जाता है, और वहां का विशाल सुख भोगने के बाद तब यह पृथ्वी पर जन्म लेता है। सुचिनम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो ही जायते, वह श्रीमान और सुखी परिवार में जन्म लेता है। भगवान ये बात कहते हैं, तत्र तब बुद्धि सद योगम लभते पौर्वदैहिकम। पौर्वदैहिकम पूर्व देह में जो बुद्धि संजोग था, उसको मेरी भक्ति थी, उसको लभते, वो बुद्धि संजोग, वो बुद्धि पुनः मिल जाती है। तत्र तब बुद्धि संजोगम लभते पौर्वदैहिकम जतते च ततो भूया संसेदव कुलवर्धन। हे कुलनंदन, उसको पूर्व जन्म में जो बुद्धि थी वो बुद्धि फिर मिल जाती है, मुझमें उसका चित्त लग जाता है, मेरी भक्ति करने लगता है और संसिद्ध हो और मेरा धन प्राप्त करने के लिए, मेरा पार्षद बनने के लिए फिर जतते, वो जत्न करता है, फिर भक्ति प्रारंभ करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भूया संसिद्ध जतते, पुनः सम्यक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ प्राप्त करने के लिए जप करता है। पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास, पूर्व में जिस शरीर को छोड़कर स्वर्ग गया और इसके बाद फिर जन्म लिया, तो पूर्व में जो अभ्यास किया रहता है, पूर्वाभ्यास तेन एव ह्रियते ही अवसह अवसह। तो वह साधक, वह भक्त अवसह, अवसह का अर्थ है कि अपने आप स्वाभाविक उसी धारा में, उसी भक्ति में पूर्वाभ्यास के द्वारा खींच लिया जाता है। पूर्व में उसने भगवान के जप का अभ्यास किया है या प्रणाम किया है, भगवान की पूजा किया है, तो ये सब अभ्यास ही उसको खींच लेते हैं तुरंत। भगवान के भक्ति में बहुत बड़ा बल होता है। कहीं भी किसी भी योगी में जाए जीव, जो भक्ति किया है उसकी वो भक्ति अक्षुण रहती है और भक्ति पुनः उसको भक्ति में ही लगा देती है। ये भगवान कहते सुखदेव गोस्वामी इस भगवदूत के रीति से इसका वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार इंद्र गजेंद्र निश्चय किए कि मैं भगवान की शरण लूंगा, तो अपने मन को हृदय में स्थिर किए। हृदय समाधाय, मन हृदय समाधाय, हृदय समाधाय का अर्थ है कि मन से विषयांतर का चिंतन नहीं कर रहे थे, कोई दूसरी चीज का, दूसरे दृश्य या स्वाद रूप रस गंध आदि का किसी का भी स्मरण नहीं कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। हृदय सबसे पहले उन्होंने भगवान के अंतर्जामी स्वरूप जो हृदय में भगवान रहते हैं, वास करते हैं, उनका ध्यान करने लगे। इसका अर्थ ये कहीं चित्त नहीं गया दूसरे तरफ और मन को हृदय में स्थिर करके परम जाप्य जजाप, इस परम सर्वश्रेष्ठ जाप्य मतलब जपने योग्य स्तोत्र का पाठ करने लगे, जपने लगे। यही स्तोत्र इस तृतीय अध्याय में दिया गया है। यह स्तोत्र बहुत ही सुंदर है और यदि इसको लगातार कोई पढ़े तो पढ़ते पढ़ते समाधि लग सकती है। इसकी रचना ऐसी सुंदर है, बहुत सुंदर और भाव परम सुंदर है। सबसे पहले गजेंद्र जप कर रहे हैं, तुम कथराज साथ दे रहे हैं। कफ बात पित्त से शरीर बना ही हुआ है, इसको त्रिदोष कहा गया है, तो कभी कभी कोई बढ़ जाता है। सब रहता है तब शरीर स्वस्थ बढ़ जाता है, तो पित्त बढ़ जाए चाहे बात बढ़ जाए और कफ बढ़ जाए। ऐसे मैं बोल सकता हूँ बीच बीच में मैं अपने मुख को साफ कर लू गंदल पर, लेकिन भक्तों को ये सावधान रहना चाहिए कि कोई जा रहा है मुंह साफ करने तो फिर प्रणाम करना है, ये करना है, वो करना है, ये कुछ ही है, इसको कोई श्रद्धा नहीं चाहिए, ढंग से रहना चाहिए। ऐसा तो लगता है कि कुछ लोग तो बाथरूम में भी घुस जाएंगे ऐसे सोचते यदि कदाचित मैं अपना मुख साफ करने में जाऊंगा तो शांति से भगवान का जप करते रहिए और मैं आकर के फिर कथा कहूंगा, और कोई ये ना समझे कि बस कथा खत्म हो गई और उठ करके चाहोगे। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, जब ऐसी दशा होगी कि फिर ज्यादा कब जम जाएगा तो मैं जाऊंगा साफ करने, अब धैर्य से यहाँ पर बैठे रहिए। सर्वप्रथम गजेंद्र ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं, ओम। ये ओंकार ये ब्रह्म का वाचक है, श्री भगवान का नाम है यह। ब्रह्म का मतलब श्री विष्णु होता है, श्री कृष्ण। ब्रह्म का ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि वो कोई अव्यक्त निराकार सत्ता मात्र प्रकाश मात्र, ये अर्थ नहीं होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म शब्द की परिभाषा दिए हैं चैतन्य चैतन्य में, ब्रह्म कहे बृहद वस्तु, बृहद वस्तु को जो अपरिच्छिन्न है सब विषय में, रूप में, सौंदर्य में, माधुर्य में, कृपा में, सत्ता में, ज्ञान में, सब में जो बृहत्तम वस्तु है, सबसे बड़ा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। यह श्री कृष्ण का ही वाचक है ब्रह्म। अतः ओंकार यह भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन करता है, और श्री कृष्ण के वर्णन से अन्य सबका वर्णन अपने आप ही हो जाता है। ओ नमो भगवते तस्मै यतयेतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। गजेन्द्रवाच ओ तस्मै नमः, नम नम अभी थी वही। गजेंद्र कहते हैं कि मैं तस्मै भगवते नमः अभिधि वही, भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं, तस्मै उनको प्रणाम, किसको? भगवते, पहले ही भगवान शब्द कहे, जो छह अशेष ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम करना ऐसे नहीं कहते हैं, मैं उनके प्रति प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं अभी भी, मैं मन से प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि शरीर ग्रह के द्वारा पकड़ा गया है, उसे प्रणाम भी नहीं कर सकते। श्रीपद सिद्धा स्वामी लिखते हैं तस्मै नमः नम नम अभिधि मई, मैं भगवान के प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान द्वारा प्रणाम कर रहा हूं। गजेंद्र मन से साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, बोल रहे हैं तस्मै नमः नम नम अभिधि मई, मैं भगवान के प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं। अभिध्यायम केवलम, मैं केवल प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं। ग्राह गृह तत्व काय प्रणते अशक्यत्वात्, ग्राह के द्वारा शरीर पकड़ा गया है इसलिए शरीर से प्रणाम करना असंभव है। पानी के भीतर ग्राह पकड़ा है अगला पैर, तो फिर प्रणाम कहां से कर सकते हैं, इसलिए प्रणाम का ध्यान कर रहे हैं। इसको मानस पूजा कहते हैं, मन से भगवान की सेवा करना, तो मन से प्रणाम भी किया था। तो मैं भगवान को मन से प्रणाम कर रहा हूँ। स्वस्तर ज्ञान संभावित विषिदृष्टि, किसको प्रणाम कर रहे हैं? विमान जी कोई पूछे, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो वे कहते हैं भगवान को। समाहित चित से बोल रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गजेंद्र जी के पास कोई पूछ रहा है, लेकिन ये टीका में प्रश्न किया था, किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो सबसे पहले कहते हैं, क्या आपको ज्ञान है उसका, जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं, जिसकी शरण ले रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं? गजेंद्र जी कहते हैं हाँ मैं जानता। क्या है वो? ये है भगवान। भगवान का क्या मतलब है? भगवान, भग का अर्थ है संपूर्ण, छह ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र, विजस्य जस्य श्रेय, ज्ञान वैराग्य सेव शरण भग इति गणा। इन अशेष छह ऐश्वर्यों को भाग कहते हैं, और इस भाग से जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं, और तस्मै भगवते। छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण परम कृपालु मैं भगवान को नमस्कार का ध्यान कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। और क्या जानते हैं? जत एत चिदात्मक, जिनके कारण, जिनके उपस्थिति से यह सारा विश्व, यह विश्व में स्थित एक एक शरीर देह आदि चेतन होता है। भगवान ही सब जगह रह करके सबके शरीर में चेतना देते हैं। वे स्वयं ही चिदमय है, चिद रूप है, स्वयं ही स्पिरिचुअल है पूर्णतः, और जीवों में वही चेतना देते हैं, इस जड़ जगत को जीवित करते हैं। यथा ये तब चिदात्मक, क्यों? तो पुरुष आया, ये पुरुष है, समस्त पुरियों में शरीरों में शयन करते हैं, इसीलिए तो उनको पुरुष कहा जाता है। ये तो पुरुषस्य पुरुषत्व, पुरुष का पुरुषत्व तो यही है, पुरुषाय। भगवान पुरुष है, पुरुष से पुरुष का होता है पूरी में जो शयन करते हैं वे है पुरुष। पूरी का अर्थ यहाँ है सबके शरीर में भी शयन करते हैं, पूरी में तो रहते ही है इसमें तो कहना ही नहीं, उन्हीं को पुरुष कहा जाता है। और अन्य पुरुषों से विलक्षणता बताने के लिए पुरुषोत्तम कहा जाता है। सामान्य पुरुष नहीं है, और भी बहुत से पुरुष है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। तो गजेंद्र जी कहते हैं मैं पुरुष से को प्रणाम कर रहा हूं। तो फिर प्रश्न होता है कि इस जगत में, इस जगत का कारण प्रकृति है और पुरुष है, तो पुरुष के द्वारा चेतना मिलती है। गजेंद्र जी कहते हैं आप ही प्रकृति है और आप ही पुरुष है। आदि बीज आया, आदि का अर्थ है प्रकृति और बीजन का अर्थ है पुरुष। आप ही प्रकृति और पुरुष स्वरूप है, ये दोनों आपकी ही शक्ति है। तो भगवान सबके हृदय में है, तो इस पर कोई कह सकता है कि भगवान जीव के समान परतंत्र है, जब सबके शरीर में है और सब में चेतना दे रहे हैं तो वे अधीन हुए, जैसे जीव भी शरीर में रहता है तो भगवान भी शरीर में रहते हैं। तो भगवान में क्या विलक्षणता रही? जीवों से विलक्षणता बताने के लिए गजेंद्र जी कह रहे हैं परेश आया, जो परेश है, पर इस परेश, पर का तो पराणाम ब्रह्मादि नाम, ईशा है, परेशा है, जो सबके ईश्वर है, देवता है। इस जगत में सबके शरीर में रह करके भी वे परतंत्र नहीं है, वे स्वतंत्र है, जीव से विलक्षण है। ऐसे प्रभु के प्रणाम का हम ध्यान कर रहे हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे,
हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे
Hare Krishna.
इसको हमेशा हम अच्छा लगती है आवाज ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधीमहि तस्मै नमः नमनम अभिधीमहि अभिध्यायेम केवलम ग्रह गृहीतत्वेन काय प्रणते अशक्यत्व स्वस्य तस्य तज्ज्ञानं संभावयितुं विशिनस्ति यतश्चिद्रूपात् एतत् देहादि चिदात्मकं भवति तदुक्तं येन चेतेते विश्वम् इति तत्र हेतु पुरुषाय पुरुषो कारणत्वेन प्रविष्टाय तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम् इति श्रुते सर्वाग्रभवत्वात् कारणत्वम् ननु प्रकृति पुरुषं कारणमिति प्रसिद्धं तत्राह आदि प्रकृति बीजं पुरुष तद्रूपाय प्रकृति पुरुषं न ततो भिन्नो इत्यर्थः प्रविष्टत्वे अपि जीव पारतंत्रं वारयति परेशाय इति यस्मिन्निदं यतश्चेदं येमेदं येदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् इदम् 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 कई बार यहाँ पर प्रयोग किया गया इस श्लोक में भगवान के परम ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए गजेंद्र भगवान की शरण ले रहे हैं और अपने रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं यस्मिन् इदम् ध्यान से सुनिएगा इदम् जस्मिन् यह संपूर्ण विश्व जिसमें है उसकी मैं शरण ले रहा हूं इदम् जस्मिन् च इदम् जतः जस्मिन् का अधिष्ठान यह सारा विश्व भगवान के भीतर है जिनके भीतर है और यह सारा विश्व जिन से निकला है जस्मिन् इदम् जतश्चेदम् जतः का अर्थ भगवान उपादान कारण है यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो भी है जितने भी जीव चार अचर है सब भगवान में है ये गजब वर्णन कर रहे हैं इदम् जस्मिन् इदम् जतः जतः का अर्थ जिन से उत्पन्न हुआ है जिन से आया है उपादान जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है मिट्टी उपादान कारण है इस तरह से भगवान से ही यह सारा संसार बना हुआ है कोई यह प्रश्न करके भगवान ने यह संसार बनाया ठीक है बनाया लेकिन संसार में सबके शरीर या भोग या नदी पहाड़ समुद्र सूर्य चंद्रमा जो कुछ भी भगवान ने बनाया तो ये सब चीजें बाहर से कहीं कुछ नहीं निकाला अपने से ही बनाया वही उपादान कारण भी है तो जस्मिन् इदम् जतश्च इदम् येन इदम् और बनाने वाला कौन है कर्ता भगवान है उन भगवान के भीतर सारा विश्व है भगवान से ही निकला है और भगवान ही इसको बनाए है यह इदम् स्वयं यहां तक कि स्वयं भगवान ही जगत के रूप में है यो अस्मात् परस्मात् च पर और इसके साथ ही या साथ जो इससे कार्य से कारणात्मक जगत से और परस्मात् कारण से परे है और जो स्वयं सिद्ध है स्वयं भुवन स्वयं ही है कोई उनको नहीं बनाया है असल भगवान सारे विश्व को बनाया है लेकिन भगवान को कोई नहीं बनाया है जो स्वतः सिद्ध है स्वतः स्वयं है ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा जस्मी निदम जतश्चेदम येनेदम याइदम स्वयं यस्मात् परस्माच परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवन। प्रपद्ये, मैं शरण ले रहा हूँ जिनमें यह विश्व जिनके भीतर है और विश्व जिनसे निकला है और जो इसके करता है, बल्कि स्वयं ही इस विश्व के रूप में वही है और जो कार्य से और कारण से परे है और जो स्वयं स्वराट है, स्वतः सिद्ध है, उनका कोई आधार नहीं है, उनको कोई बनाने वाला नहीं है, इनको पालने वाला कोई नहीं है, बल्कि वे सबको बनाते हैं, वे सबको अपने भीतर रखे हैं और सबका पालन करते हैं और जो कार्य और कारण सबसे परे हैं, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं। ये एकदम शब्द कह देना बहुत आसान है, ये सारा संसार भगवान में स्थित है, लेकिन एकदम की जब व्याख्या होगी तो पता चलेगा यह विश्व कितना विचित्र है। यहाँ कई प्रकार के प्राणी हैं, उनका शरीर है, अनेक आत्माएं हैं जिनका शरीर है, शरीर भी 84 लाख प्रकार के हैं और एक एक प्रकार में अनंत अनंत संख्या है, अनंत अनंत कोटि जीव है, उनका शरीर है, उनको खाने को चाहिए, उनको पीने को चाहिए, पहनने को चाहिए, घर चाहिए, एक शरीर के यूज में आने वाली वस्तुओं की ही गणना असंभव है। एक आदमी कितना कितना रखा हुआ है सामान, एक तो शरीर भगवान ने दिया है और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, पहनने के लिए क्या क्या, कितना कितना सामान आदमी रखा है मनुष्य, पशुओं के लिए भी रहने के लिए स्थान चाहिए और खाने के लिए वस्तु चाहिए, फिर जलचर जीव है, थलचर जीव है, नभचर है, पशु पक्षी और इसके साथ ही देवता, देवताओं का ठाट बाट कुछ और ही है, उनका लोक, उनका शरीर, उनके भोग की वस्तुएं और फिर दैत्य, तल अतल वितल आदि लोकों में दैत्य भरे पड़े हैं और इसके साथ ही गंधर्व सिद्ध चारण आदि है और बड़े बड़े सर्प है, मनुष्य तो है ही, मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर देने में ही मनुष्य समाज समझता है हम बहुत किए हैं, खास आवश्यकता की पूर्ति, वास्तव में सब कुछ भगवान कर रहे हैं लेकिन मनुष्य मानता है कि हम कर रहे हैं, हम ही बनाए हैं, संगठन बनाए हैं तो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अरे अपने लिए तो करो पहले, कोई मान लीजिए मिनिस्टर कहे कि हम कर रहे हैं, उसे पूछना चाहिए और तुम हवा में सांस ले रहे हो, ये हवा कहाँ से लिए हो, जिस जमीन पर खड़े हो, भुवनेश्वर में टिके हो, कार चला रहे हो, ये भूमि कहाँ से लाए थे, भगवान किसी दिन कह दे सरकार को कि तुम लोग हमारे भूमि पर कोई भी वाहन मत चलाओ, बंद कर दो, क्या करेंगे, उस दिन पता चलेगा तब जगन्नाथ जी को हाथ जोड़ेंगे, छुट्टी दे दीजिए प्रभु, क्या करें, मर जाएंगे। भूमि कोई लेकर के आया था, कोई नेता या वैज्ञानिक या कोई लेकर के आया था, वैज्ञानिक एक नंबर के गधे है, वास्तव मूर्ख से भगवान की महिमा नहीं गाते हैं, हम आविष्कार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर, क्या किए हैं, सूर्य बदल करके दूसरे नया सूर्य लगाए क्या, ये बहुत आविष्कार करते हैं, भगवान की बनाई हुई वस्तुओं में रूपांतरण करते हैं, उसी का नाम कार या भगवान या ये वो दे दे, ये सब भगवान के ही नियम है, भगवान का उत्पादन है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो इदम का अर्थ है यह विचित्र विश्व, ये कहाँ है, ये कहाँ पर टिका हुआ है, जस्मी जिसमें श्री भगवती श्री भगवान में टिका हुआ है, उन्हीं के भीतर है,
ये सारा विश्व भगवान में है। इसको तो भगवान ने कई बार दिखाया भी है, अर्जुन को दिखाया गीता के 11वें अध्याय में वर्णन है, कुरुक्षेत्र में भगवान ने दिखाया मम देहे गुणाकेश जो चंद्र दृष्ट इच्छा, देखो मेरे शरीर में जो भी तुम देखना चाहते हो कुछ चीजों का नाम रखे भगवान, ये देखो ये देखो ये देखो, और अन्य तपी अन्य भी जो कुछ देखना चाहते हो देखो मुझमें। अर्जुन को दिखाया भगवान ने सारा सब कुछ, किस तरह से जगत अवस्थित है और किस तरह से श्री कृष्ण उसको उत्पन्न करते हैं, पालते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, संयम में, ये सब देखे गजेंद्र। इसी तथ्य को यहाँ प्रकट कर रहे हैं, जसवी निदान जिन प्रभु के भीतर ही यह सारा विश्व है और प्रभु ही विश्व के रूप में बने हुए हैं, उन्हीं से विश्व निकला है और वही करता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़े को बनाने वाला कुंभकार होता है, इस तरह से भगवान ही विश्व की रचना किए हैं और भगवान ही उपादान कारण है, उन्हीं से सब विश्व निकला है, क्योंकि भगवान से पहले कुछ था नहीं। यह तो देखा जाता है कुंभकार घड़ा बनाने वाला रहता है और मिट्टी भी पड़ी रहती है, उसी को ला करके फुला करके लौंद करके चाकू जैसे जैसे घड़ा बनाता है, लेकिन भगवान जो विश्व का निर्माण करना चाहे कुछ था ही नहीं, नारायण के अलावा भगवान के अलावा कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने से ही अपने भीतर से ही विश्व का निर्माण किया। इसका मतलब भगवान की शक्ति ही विश्व के रूप में परिणत हुई, इसको हमारे आचार्य परिणामवाद कहते हैं, श्रीमद् शंकराचार्य इसको विवर्तवाद कहते हैं। विवर्त का अर्थ होता है प्रतीति मात्र, अन्यस्मिन अन्यस्य प्रतीति, कोई वस्तु जहां नहीं है उसकी प्रतीति होना उसको विवर्तवाद कहते हैं। जैसे कहीं पर रस्सी पड़ी है, रज्जु पड़ा है, तो उसमें सर्प का भ्रम होना, तो सर्प का भ्रम होना वास्तव में रज्जु है, सर्प नहीं है, लेकिन उसमें सर्प का अभ्यास हो जाता है, सर्प बुद्धि होती है, तो उसको कहा जाता है यह विवर्तवाद है, वह सर्प नहीं है लेकिन सर्प का भाव हो रहा है, तो वास्तव में संसार है नहीं, यह मिथ्या है कुछ नहीं। एक बार तो ये कहना, जब शास्त्र कहता है ब्रह्म से जगत निकला है और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो फिर ये लोग ये भी कहते हैं नहीं ये जगत है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है नहीं, स्वप्न की तरह मिथ्या, ऐसा कह देते। और दूसरी बार कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वेद कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म भी झूठा हुआ ना, तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये सारा ब्रह्म ही है, फिर कहते हैं कि यह सब सपना है, जैसे मतलब ब्रह्म सपना हो गया, नहीं ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म का उत्पादन है, जगत भी सत्य है। ये बात है कि ब्रह्म ही जगत के रूप में नहीं है, उसकी शक्ति परिणत है जगत के रूप में, बहिरंगा शक्ति, इसलिए शक्ति शक्ति मतो रभेदात, शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, एक विवक्षा से कहा जाता है कि इस जगत के साथ भगवान का इतना संबंध है, इतना संबंध है निकट का, उन्हीं की शक्ति परिणत हुई है, इसीलिए कह दिया जाता है कि यह एकदम स्वयं भगवान स्वयं भी जगत के रूप में है। इस उक्ति में कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी है इस जगत के भगवान निर्माता है, वही उपादान कारण है, वही अधिष्ठान है, उन्हीं में जगत टिका हुआ है, वो स्वयं ही इस जगत के रूप में है और कार्य से परे है, जगत के रूप में होते हुए भी अस्मात परस्मात च पर, इससे और उससे पर से भी कार्य से और कारण से परे है, तम प्रपद्ये स्वयंभूमि, ऐसे स्वयं भगवान की मैं शरण लेता, भगवान को स्वयं कहते, स्वयं का अर्थ उनका दूसरा कोई कारण नहीं है, वो स्वयं है। कई बार लोग ऐसे पूछते हैं भगवान ने दुनिया को बनाया तो भगवान को कौन बनाया? भगवान का एक डिफिनीशन है कि भगवान वो है जिसको कोई नहीं बनाया, जो स्वयं है, बिना बनाए बिना उत्पादन किए ही है। कब से है? अनादिकाल से। काल की कोई सीमा नहीं है, कब से है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसी को उसको सत्य कहते हैं, सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। तो जगत के कारणत्व तो को इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। यह है भगवान का परम ऐश्वर्य। परम ऐश्वर्य विवृणवन आह जावत समाप्ति जस्मिन अधिष्ठाने परमे व्योमन सर्वा भूतानि जत उपादान जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन कर्त्रा जेन जातानि जीवन्ति इति जश्च स्वयं एव इदं विश्वं भवति सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः। अस्मात् कार्यात् परस्मात् कारणात् च यः परः तं स्वयं भुवं स्वतः सिद्धं प्रपद्ये शरणं व्रजामि। अब इस श्लोक में चौथे श्लोक में गजेंद्र जी कहते हैं यह स्वात्मनिदं निजमाय अर्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितं अभिद्धदृक्साक्षुभयं तदिच्छते सयात्मनूलो वतुमां परात्परः। अपने भीतर ही अवस्थित इस विश्व को जो अपनी अपनी माया के द्वारा रचित इस विश्व को अपने भीतर ही जो स्थित रखते हैं और यह विश्व दो रूप में प्रकाशित होता है क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम। कभी कभी यह संपूर्ण विश्व विभातम, विभातम का अर्थ अव्यक्त होता है। सृष्टि के समय, सृष्टि के समय भगवान इस जगत को प्रकट करते हैं। अब देख ही रहे जैसे बाजार का समय हो, शहर में बाजार का समय हो तो उसमें कितनी हलचल होती है, सभी दुकानें खुल जाती है, बाहर चलने लगते हैं, तो बहुत इसको विभातम करते हैं, विभातम। कोच कभी कभी प्रलय के समय तिरोहितम, तो तिरोहित कर लेते हैं, कारण में लीन कर लेते हैं, अपने भीतर ही समाहित कर लेते हैं सारे विश्व को। तो भगवान सृष्टि किए हैं, कितना यह विचित्र जगत है, भोजन की वस्तुएं और चलने के लिए रोड, खेत, कारखाना, काम धंधा, विमान इधर उधर, एक एक शहर में हम लोग देखते हैं कितना कितना उत्पादन, कितनी कितनी चीजें, और जीवों में चेतना भी दिए है भगवान ही, चेतना दिए है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सोच रहे हैं, खा रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान चेतना दिए है और अपने भीतर ही। तो कभी कभी इस जगत को इस क्रियाकलाप के साथ व्यक्त करते हैं, क्वचित विभातम, कभी प्रकट रहता है सृष्टि के समय में, और क्वचित तब तिरोहितम, और कभी कभी प्रलय के समय यह तिरोहित हो जाता है, सारा विश्व नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब अपने कारण में लीन हो जाता है, महत्त्व आदि में लीन हो जाता है। दोनों समय के स्थिति को, समस्त जीवों की स्थिति को, इस विश्व की स्थिति को भगवान साक्षी बन करके देखते रहते हैं। अभिद्रिक साक्षी भयम तदीक्षते स्वयात मूलो वतुमान परात्पर, इन दोनों के भगवान साक्षी रहते हैं। श्री भगवान प्रलय काल में भी रहते हैं और देखते रहते हैं कि सब लोग सो गए हैं, काल में लीन हो गए। प्रलय काल में कोई क्रियाकलाप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और सृष्टि के समय सब काम धंधा चालू हो जाता है, खान पान सब कुछ, क्वचित विभातम और तिरोहितम। अभिव्यक्त दशा में सृष्टि के समय और प्रलय में सुप्त दशा में तब उभयम तदीक्षते। भगवान कार्य और कारण दोनों को देखते रहते हैं, दोनों के साक्षी हैं, साक्षी बनकर देखते हैं। क्यों? अविद्धिक अलुप्त दृष्टि। श्री भगवान की दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है, ज्ञान दृष्टि। ये जो मनुष्यों की नेत्र दृष्टि है, यह तो कुछ भी नहीं है भगवान की दृष्टि के सामने, ज्ञान दृष्टि के सामने। अविध दृक, दृक का अर्थ है दृष्टि और दृष्टि का अर्थ है ज्ञान, परंतु वास्तव में कारणोदक साई भगवान या श्री नारायण अलुप्त दृक देखते रहते हैं, कभी उनकी पलक नहीं गिरती है, खुले आंख से देखते रहते हैं किस तरह से प्रलय हुआ और किस तरह से सृष्टि के समय सब जीव जगे रहे, खाए पिए, काम धंधा किए, सब कुछ देखते हैं। केवल इसका अर्थ ज्ञान दृष्टि नहीं समझ लेते, भगवान की दृष्टि वास्तव में अनंत महिमा से युक्त है, वो परम सुंदर पुरुष है और उनकी अपनी आंखें हैं अलुप्त दृक, अविद्ध दृक। विद्ध का अर्थ है किसी काल द्वारा या सीमा विदेश द्वारा जब कोई दृष्टि बाधित हो जाती है तो उसको विद्ध दृक कहते हैं। जैसे हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते, कुछ देश में देख रहे हैं, देश में स्थान, कुछ स्थान तक हम देख सकते हैं, लेकिन स्थान दूर होने पर वहां हम नहीं देख पा रहे। बम्बे में कौन कहाँ बैठा है, या यही भुवनेश्वर में भी कौन किस घर में है, कहाँ है, क्या है, इधर उधर कुछ पता नहीं। अरे दूसरे का क्या पता, अपना ही पता नहीं है कि कैसे कब बन रहा है, क्या हो रहा है, दूसरे का क्या आदमी देखेगा, अपना ही नहीं पता चलता है। और बन जाता है ईश्वर इस तरह से संसार में आदमी बिल्कुल उन्माद में है। वास्तव में भगवान की दृष्टि अनंत देश को पार करके ही देखती रहती है और काल को भी, काल मतलब भूतकाल, अतीत काल और वर्तमान काल और भविष्य काल में जो कुछ भी होना है सब जगह भगवान की दृष्टि है, सब जगह देखते रहते हैं। तो प्रलय काल में भी जीवों की दशा देखते रहते हैं और जागृत सृष्टि के समय तो देखते ही रहते हैं। जो पर से भी पर है, परात पर, परात पर। एक बार मैं एक भक्त का नाम रखा परात पर दास, ये क्या नाम रख दिया महाराज जी, परात पर। परात पर शब्द है, परात का अर्थ है पर से, पर भी परे, पर से भी परे हो, पर से श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, सबसे विलक्ष परात पर है शब्द, पर से भी पर। इस जगत का कारण कौन है, मनुष्यों के शरीर आदि का कारण कौन है, पंच महाभूत, क्षिति जल अग्नि वायु आकाश, इनका कारण कौन है, इनका कारण है महत्त्व आदि। महत्त्व का कारण कौन है, प्रकृति, प्रकृति के कारण कौन है, पुरुष, और प्रकृति पुरुष दोनों के कारण कौन है, भगवान। पर से भी पर है, परात पर, और स्वयं आत्ममूल, स्वयं ही मूल है, वे सबके मूल है परंतु उनका मूल कोई नहीं है, आत्ममूल, स्वयं आप ही अपना मूल है, मूल मेरे कारण, आत्म कारण, भगवान को बनाने वाला, भगवान को ज्ञान देने वाला कोई दूसरा नहीं है, भगवान को वास स्थान देने वाला कोई दूसरा नहीं है, वह अपना ही स्वयं कुछ सब कुछ है। भगवान सब बनाए हैं, भगवान रहते हैं, हम लोग तो भगवान पर आश्रित हैं, उनके द्वारा बनाए हुए भूमि को जोतते हैं या भूमि का उत्पादन लेते हैं। कोई भी व्यक्ति आत्ममूल नहीं है, सबके पिता और माता है, पिता माता से जन्म हुआ, खाए पिए और ज्ञान भी दूसरा दिए, स्कूल का टीचर पढ़ाया और आया कौकर तब जाकर के कुछ सीखे है ना। आत्ममूल कोई नहीं, सबके मूल श्री विष्णु है। इस तरह से देखा जाए हमारे मूल हमारे शिक्षक हुए, हमारे माता पिता, उनको पढ़ाने वाला कौन था, उनका मास्टर उनके पिताजी, उनको पढ़ाने वाला कौन था। इस तरह से अगर हम हटाते जाए वर्तमान कारण को तो पीछे का कारण आएगा, इस व्यक्ति ने पढ़ाया, इस व्यक्ति ने पढ़ाया, इस व्यक्ति ने जन्म दिया, लेकिन सबके बाद सिर्फ ब्रह्मा जी आएंगे लास्ट में, ब्रह्मा जी ने सबको जन्म दिया। तो ब्रह्मा को कौन जन्म दिया, वे भगवान के नाभि कमल से जन्म लिए। कोई बुद्धू आदमी प्रश्न करेगा फिर भगवान नारायण को कौन जन्म दिया, आत्ममूल ये उत्तर है, उनको कोई नहीं जन्म दिया। कभी कभी बोका आदमी ऐसे भी पूछ देते हैं, तो बिना जन्म दिए कैसे हो गए। जरा विचार कीजिए, कोई बिना जन्म दिए कैसे हो गए। काल और देश से सीमित बस बुद्धि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कैसे हो गए, हुए नहीं, भगवान हुए नहीं है, है बस बस है, और है भी नहीं कहा जा सकता उनको, क्योंकि जो है अगर ये कहेंगे तो इसका मतलब कि पहले हुआ है और या भविष्य में होगा, इसलिए सारी क्रियाएं कभी निषेध किया जाते हैं, शब्द की वहां पकड़ नहीं है। वे आत्ममूल है, आत्ममूल का अर्थ तो आत्मा ही मूल है भगवान। विश्व हेतुत्व चक्तम इदानी विश्व प्रकाशकत्व वाणे प्रार्थयते यह स्वात्मनि इति विभातम अभिव्यक्तम सत् क्वचित् प्रलय त्रेहि तिरोहितम लीलम लीलम सत् तदुभयम् कार्यम कारणम च साक्षी सत् इच्छते साक्षित्वे हेतु अभिद्रि अलुप्त दृष्टि आत्ममूल स्वयं प्रकाश कुतः परात् प्रकाशकात् चक्षुरादेरपि प्रकाशक इत्यर्थ चक्षुषः चक्षुः इत्यादि श्रुते। वेद में लिखा गया है भगवान चक्षु के भी चक्षु है, चक्षु के भी चक्षु है। सूर्य को चक्षु कहा जाता है, सूर्य सबको प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है, लेकिन भगवान तो सूर्य में भी प्रकाश देते हैं। प्रभास्वी शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश और मैं हूँ भगवान इस तरह बोलते हैं। तो गजेंद्र जी कहते हैं भगवान आत्मगुण है और पर से भी परे है, इस जगत के साक्षी है, सबको देखते हैं। जस्मी निदम जतस चेदम में जगत कर्तृत्व का वर्णन किया गया, भगवान जगत के कर्ता है, उत्पादन करने वाले हैं। और उसके बाद चौथे श्लोक में यह बता रहे हैं कि भगवान ही इस जगत को प्रकाशित करते हैं, केवल बनाते ही नहीं प्रकाशित भी वही करते हैं, इसको प्रकट करते हैं या तिरोहित करते हैं, कभी बंद करके रख देते हैं प्रलय काल में या सृष्टि काल में प्रकट करते हैं। अतः कोई भी देवता सात्विक जीव देवता और ऋषि मुनि भी भगवान को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते हैं। न जस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टत दुरत्ययानुक्रमणः समावत। जिनके पद को चरण कमल को जिनके स्वरूप को सात्विक देवता भी नहीं जानते हैं, ऋषि लोग भी नहीं जानते, फिर आज का अर्वाचीन ये जंतु कहां से जान पाएगा। जब भगवान को ऋषि लोग देवता लोग नहीं जानते हैं तो जंतु पुनः कोरहति गंतुमीरितुम, जंतु का अर्थ आज जन्म हुआ जंतु पशु बिल्कुल दो पैर वाला ये पशु जंतु कह अर्हति गंतु वीर तुम वो भगवान को जानने के विषय में और बोलने के विषय में कह अर्हति कौन समर्थ है कौन ईश्वर को जान सकता है। इसीलिए तो मनुष्य समाज में ये प्रचार है कि भगवान निराकार है या नहीं है, चाहे जिस किसी आदमी को ही भगवान मान लिया जाता है, यदि भगवान का पता ही नहीं है तो किसी को भी भगवान मान लेंगे या नहीं मानेंगे। भगवान के यथार्थ रूप का ज्ञान देवताओं को नहीं है, ऋषियों को नहीं है। देवता बहुत ही उच्च कोटि के प्राणी है इस ब्रह्मांड में, जिनके जीवन की अवधि बहुत लंबी होती है और ज्ञान भी मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक होता है। सब कुछ देवता वे उच्चतर लोकों में रहते हैं, उन्हें भोग बहुत ही सुलभ है, उत्कृष्ट कोटि का। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में सब कुछ दिया गया है। तो गजेंद्र जी कहते हैं कि नजस्य देवा ऋषय पदम विदु जंतु पुनः कुरहति गंतु वीरतु यथा न तस्या कृतिभिः विचेष्टतः दुरत्यानुक्रमण समावतु यथा आकृति भी विचेष्टतः न तस्या जैसे आकृतियों से विविध आकार से नट विचेष्टा करता है, विविध लीला करता है, नाचने वाला नट नाचने में देखा जाता है कई प्रकार की आकृति धारण कर लेता है, तो कभी कभी वो हनुमान जी बन जाता है। व्यक्ति वही है लेकिन कभी हनुमान जी बन जाता है। और मान लीजिए हनुमान जी बन करके और श्री राम जय राम गाने लगे। अच्छा, कभी कभी वही नट स्त्री बन जाता है और नाचता है और कई प्रकार के भाव बनाता हूँ अपने हाथों के इशारे से, आंखों द्वारा वो कमल का भाव, चंद्रमा का भाव या संगीत के ताल तरंग के अनुसार विविध प्रकार के भाव पेश करता है। उसकी आकृति भले भिन्न हो जाए लेकिन है वही, वो बहुरूपिया और नट वही रहता है। तो गजेंद्र जी कहते हैं यथा आकृति ही विचेष्टतः नटस्य संगीत शास्त्र से, नृत्य शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति नट के अभिप्राय को, भाव को नहीं समझ पाता है। तो क्यों ऐसे हाव भाव बना रहा है, क्यों वेशभूषा धारण किया है, कभी कभी तो लोग पहचान भी नहीं पाते। कुंभ मेला में प्रयाग में कम से कम मैं देखा 6-7 हनुमान जी खड़े थे जगह जगह, और वे हनुमान जी भीख मांग रहे थे। उसे कुछ भी पता नहीं चलता था, वैसे तो सभी मनुष्य लगभग अपरिचित ही थे, फिर भी ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई आदमी है। दूसरे बच्चे तो भ्रम में पड़ जाते थे, हनुमान जी खड़े हैं, हनुमान जी है, ये है, वो है। देखिए वर्णन हुआ देवता और ऋषि लोग, ऋषि जो बड़े ही सात्विक होते हैं, जिनका मन समाहित होता है, तेज बुद्धि होती है, वे लोग भी भगवान को नहीं जान पाते, वो जाने या न जाने लेकिन भगवान का रूप है इस उद्गार से व्यक्त हो रहा है। जैसे नट को विविध आकृतियों में कोई न पहचाने वो दूसरी बात है, लेकिन नट का अपना आकार है, वह विभिन्न समय में विभिन्न आकृति धारण करता है। उसी तरह से श्री भगवान कभी कच्छा अवतार लेते हैं, कभी नृसिंह अवतार धारण करते हैं, वो है उसी आकार से वे फिर कच्छप के रूप में हो जाते हैं। उनका शरीर नहीं छूटता है, शरीर शरीर का भेद ही नहीं है उनमें। उन श्री कृष्ण ही केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, धृत का रूप धृत, भगवान इस तरह से रूप धारण करते हैं तो उनके यथार्थ स्वरूप को महिमा को और केवाईसी लीला कर रहे हैं, इसको देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जान पाते। तो फिर जंतु कुतः, आज का जानवर क्या जानेगा? इन मनुष्यों को गजेंद्र जी जंतु कह रहे हैं। जंतु का अर्थ होता है जो इस प्राकृतिक शरीर में अभी अभी जन्म लिया है, तो कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, न सत्संग किया है, न बड़े बड़े लोगों से संग है, वो क्या जानेगा भगवान को, क्या जानेगा? न वो जानने में समर्थ है, न बोलने में समर्थ है। गंतुम ईरितुम वक्तुम, गंतुम का अर्थ ज्ञातुम। आज का व्यक्ति न तो भगवान को जान सकता है और न बोल सकता है। जैसे नृत्य शास्त्र या संगीत शास्त्र से अभिज्ञ व्यक्ति नट के आकृतियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए चेष्टाओं को नहीं समझ पाता है, ऐसे ही भगवान की लीला, भगवान का अनुक्रम चरित दुरत्य है, दुर्गम है, कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। देवता और ऋषि समझते ही नहीं, तो आज का आदमी क्या समझेगा? गजेंद्र बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, ब्रजस देवा ऋषि पदम विदु। पदम, पदम का अर्थ है चरण कमल। भगवान के जो इस जगत के रचयिता है, उनका सुंदर चरण कमल है पदम। यह पद का अर्थ होता है स्वरूप। पदम स्थान रूप स्वरूप अंग्री लक्ष्म निश्चय हेतु इति कोशा। पदम के कई अर्थ है। पदम का अर्थ होता है स्थान, स्वरूप, चरण और लक्ष्म, लक्ष्म और निश्चय और हेतु। यह पदम का अर्थ है स्वरूप या चरण कमल। जिनके स्वरूप को, सचिदानंद श्री विग्रह को अथवा जिनके चरण कमल को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, गजेंद्र यह स्तुति कर रहे हैं भगवान की। क्या क्या अच्छा छोड़ दिया, तो प्रलय का ही वाले तिरोहिता निक्षते, इसकी व्याख्या है। एक दिन ऐसा समय आता है काल के द्वारा सारे लोक और लोकपाल, सब लोग और लोगों का पालन करने वाले बड़े बड़े देवता अधिकारी आदि सब पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं, प्रलय हो जाता है। तो प्रलय काल में तमस तदासी गहन गभीरम, प्रलय के समय में केवल अंधकार रहता है। गजेंद्र जी कह रहे हैं केवल अंधकार रहता है। कैसा अंधकार? गहन दुर्वगाह। दुर्वगाह का अर्थ है इतना सूक्ष्म घना अंधकार रहता है कि उसमें कुछ भी देख पाना संभव नहीं है, और अनंतम, उसे कोई अंत नहीं होता है, बहुत दूर तक गहन अंधकार रहता है, तमह रहता है। परंतु जस्तस्य पारे भी बिना जते विभू, लेकिन विभू श्री भगवान उस तमह के परे पारे महावैकुंठ अपने वैकुंठ धाम में या गोलोक में विराजते विराजते रहते हैं। गजेंद्र इस तरह से कह रहे हैं कि प्रभु इस तमह से परे प्रलय काल में जब चारों तरफ केवल अंधकार रहता है, इस अंधकार से बहुत दूर अपने धाम में जिसका कोई संपर्क नहीं है, इस अंधकार से, अंधकार वहां तक है नहीं, दिव्य चिन्मय धाम है, उस अपने परम धाम में विराजते वे प्रभु हमारी रक्षा करे। भाग्य प्रलय काल में भगवान अपने धाम में विराजते रहते हैं और सृष्टि के समय में भी विराजते हैं। अभी विराजते, ये राजते शब्द है, राजन का अर्थ होता है राजते का, कि बहुत सुंदर लग रहा है, सुखी रहते हैं। इधर सब प्रलय हो गया है, सबका विनाश हो गया है, अंधकार भरा हुआ है, लेकिन भगवान राजते आनंद से बांसुरी बजाते रहते, कोई अंतर उनको नहीं होता है अपने दिव्य धाम में। राजते और राजते में दो उपसर्ग लगाए गए हैं, वी और अभी। अभी का अर्थ अभी तो सब प्रकार से आनंद में वे लीला करते रहते हैं, विराजते। और विशेषण राजते और अभित राजते। हमको एक बार श्रीमद् भागवत पढ़ा रहे थे एक पंडित जी, तो हम उस समय अभी उपसर्ग का अर्थ नहीं जानते थे, तो हमने कह दिया तो अभी विराजते मतलब अभी भी विराज रहे हैं ना। तो बाबा अब सुन करके कहा हाँ हाँ अभी भी तो है ही ना, अभी विराजते। तो अभी उपसर्ग अभी कार्य अभी तो सब प्रकार से भगवान सुखी है, लीला करते रहते हैं, गोचरण करते हैं अपने सखाओं के साथ या वैकुंठ में अपने पार्षदों के साथ परम सुख में रहते हैं। इधर अंधकार है, सबका विनाश हो चुका है, मर गए हैं, शरीर छूट गया है सब, तो केवल अंधकार छाया रहता है। और वो भी अंधकार का ऐसा गहन गंभीर जस्तों से पारे भी विराजते तो विभु, लेकिन भगवान इस अंधकार से परे विराजते हैं अपने धाम में, खूब सुखी है, आनंद में है अपने परिकरों के साथ। इधर सृष्टि होती है, इधर प्रलय होता है, भगवान के धाम में कभी कोई प्रलय नहीं होता है, कोई सृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं की जाती है, बस नित्य धाम है, आनंदमय सच्चिदानंद धाम है। उस धाम में भगवान विराजते रहते हैं, वही प्रभु हमारी रक्षा करे। क्या इसमें निराकार का वर्णन है? कोई जरा सोचे। कभी कभी लोग कहते हैं कि गजेंद्र जी जिस ईश्वर की चर्चा किए हैं अपने स्तुति में, उसका कोई नाम नहीं बोल रहे। वास्तव में नाम नहीं बोले हैं, लेकिन गुणों को बोले हैं, खूब गुण बोल रहे हैं। तो जो ऊपर विराज रहा है वैकुंठ में, बिना नाम के है क्या है? और विराज रहा है तो निराकार क्या विराजता है? जरा सोचिए, विराज रहा है कोई व्यक्ति है ना, चाहे खा रहा है आनंद से, चाहे गा रहा है, नाच रहा है सुख से, विराजते अभी विराजते विभु। इस संसार से बिल्कुल अतीत है भगवान का धाम, वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई जरा नहीं है, व्याधि नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं, भगवान वहां सुख से आनंद से लीला करते रहते हैं। और इधर तब छाया रहता है, और वैसे प्रलय न भी हो फिर भी ये तब है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, पूरा प्राकृत जगत अंधकार से ग्रस्त है, अज्ञान से ग्रस्त है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति के द्वारा अविद्या की पांच वृत्तियां यहाँ काम करती है, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ये मत समझिए कि यहाँ सूर्य के जलने से और बिजली के जलने से जीवों को भगवान का ज्ञान हो जाएगा। अगर ये जले भी, लेकिन इनका प्रकाश बहुत दूर नहीं जाता है, और इनके प्रकाश से की पहुंच अगर होती वैकुंठ तक, वैकुंठ में दिखाई पड़ते भगवान, तब ज्ञान हो जाता है। ये तो अंधकार से ग्रस्त जगत है तो, और भगवान पूर्ण प्रकाश जगत वैकुंठ में रहते हैं, चिन्मय जगत। अतः इस कारण से यहाँ के ऋषियों को, मुनियों को और देवताओं को भी भगवान के रूप का पता नहीं होता। नजस्य देवा ऋषय पदम विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टत दुरत्ययानुक्रमणः समावत। जथा आकृति विचेष्टता नटस्य देवा ऋषय जस पदम न विदुन न विदुन पुनः कह जंतु गंतुम ईरितुम अर्हति दुरत्याक्रमण स्वभाव अतएव देवादेव जस्य स्वरूप चरण कमल दबिदु। जब देवताओं को और ऋषियों को भगवान का पता नहीं है तो इस पृथ्वी पर मनुष्य क्या जान पाएंगे भगवान को। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है गजेंद्र जी का, क्या जानेंगे, क्या जानेंगे और क्या बोल सकते हैं। गंतुम और ईरतुम, ईरा का अर्थ है वाणी। इस पृथ्वी पर न तो कोई मनुष्य भगवान को जान सकता है न बोल सकता है, फिर भी बोलने की आदत है मनुष्यों को, अतः हमें नॉन सेंस बोला करते हैं। जो भगवान का कोई पता ही नहीं है, देखे ही नहीं उनके रूप चरण कमल का। अच्छा, पद का अर्थ चरण कमल, तो बड़े लोगों का जो शरीर होता है उसी को चरण कहते हैं, चरण से ही उनके शरीर का बोध होता है। तो भगवान का पद मतलब भगवान का स्वरूप है, उनका श्रीविग्र सुंदर शरीर उसको नहीं जान पाते। जब भगवान के स्वरूप को ही नहीं जानते हैं तो भगवान की लीला को क्या जानेंगे। स्वरूप का भी पता नहीं है, लीला का पता नहीं है, इसलिए दुरत्ते अनुक्रमण, अनुक्रम का अर्थ होता है लीला। दुरत्ते दुर्गम अनुक्रम, उस श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्रम शब्द का अर्थ बताया है। प्रसिद्ध श्लोक जिसकी व्याख्या भगवान ने 61 प्रकार की है, आत्मा राम चंबुलयो दीर्घ अपि उरुक्रमे उरुक्रमे। इस पर क्रम शब्द का अर्थ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्रम का अर्थ है पदन्यास, भगवान को त्रिविक्रम कहते हैं, और क्रम का अर्थ है लीला, और क्रम का अर्थ है परिपाटी, लीला त्रिविक्रम। त्रिविक्रम को कहते तीनों जगत जिनकी लीला है, अर्थात ये सारा विश्व जिनके लिए तीन कदम है, बस इतना बड़ा बड़ा कदम रखते हैं। और क्रम का अर्थ है लीला, सौंदर्य माधुर्य भक्त वात्सल्य आदि, ये भी भगवान का क्रम है। यह दुरत्ते अनुक्रमण, जिनका जिनकी लीलाएं दुरत्ते है दुर्गम है, ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें। तो उदाहरण यही दिए हैं कि जैसे नट अनेक आकृतियां धारण करके नाचता है परंतु साधारण आदमी उसको नहीं पहचान पाता है, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को लोग नहीं पहचान पाते हैं, अनेक आकार से ये विविध लीला प्रस्तुत करते हैं। तब एक प्रश्न होता है कि जब भगवान को कोई जान ही नहीं सकता है तो वे है ये कैसे माना जाएगा। जब उनको कोई जान ही नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, ज्ञातुम इर्तुम न अर्हति। भगवान को कोई जान नहीं सकता है और न उसके विषय में प्रवचन कर सकता है, तो फिर वेद क्यों कह रहा है कि तुम विदित्वा अतिमृत्यु वेति। वेद कहता है कि भगवान को जान करके उनकी भक्ति करके जीव मृत्यु को पार कर जाता है, जन्म मृत्यु को पार कर जाता है और उनको प्राप्त करता है। तब विदित्वा अतिमृत्यु वेति, अतिमृत्यु एति, मृत्यु के पार चला जाता है, भगवान के धर्म में चला जाता है। क्यों शास्त्र कह रहा है, अगर शास्त्र ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान को जाना जा सकता है, क्योंकि उनको जानने वाला मृत्यु को पार करता है, ये शास्त्र कह रहा है। और हम कैसे कह रहे हैं कि उनको कोई नहीं जान सकता है। शास्त्र कहता है कि भगवान को जान करके तब जीव जन्म मृत्यु से पार होता है, और आप कहते हैं कि उनको कोई जान ही नहीं सकता है। और बहुत से लोग भगवान को जान करके जन्म मृत्यु के प्रवाह को पार किए हैं, मुक्त हो गए हैं। वेद से विपरीत क्यों बोल रहे हैं आप। भगवान को देखा जा सकता है ना, जाना जा सकता है ना, गजेंद्र जी कहता कि हाँ हाँ भगवान में जाना जा सकता है, कौन जानेगा कौन देखेगा उनको, उसको इस श्लोक में बता रहे। दिदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त लोकामृतम व्रणम वने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गतिः। जस्य सुमंगलम पदम दिदृक्षवः विमुक्त संगः सुहृदः सुसाधवः मुनयः भूतात्म भूतः वने अव्रणम अलोक व्रतम चरन्ति समे गति भवतु इति शेष। श्रीधर स्वामी जी लिखते कथम तरही तमेव विदित्वा अतिवृत वेति इत्यादि श्रुति इत्यासंख्य तद ज्ञानोपायम कथयन आह। कौन भगवान को देखता है, जो साधन करता है भक्ति करता है, इस श्लोक में ये बात बताई जा रही है। जस्य सुमंगलम पदम दिदृक्षवः, जिनके सुमंगल स्वरूप को चरण कमल को देखने की अभिलाषा वाले, देखिए शब्द कितना सुंदर है, जस सुमंगलम पदम भगवान का स्वरूप भगवान का चरण कमल सुमंगलम नित्य सुख स्वरूप है, आनंदमय है और अमंगल का नाश करने वाला है। भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से ध्यातुर मन शैल विशिष्ट वज्र, भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से मंगल होता है। अरे उस चरण के जल को रह करके शिव जी हो गए, भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं शिवा शिवो भूत। शिव जी इतने महान क्यों हो गए, क्योंकि भगवान के चरण कमल के जल को श्री गंगा जी को अपने जटा में धारण किए हैं, इसलिए नहीं तो इनको कौन पूछता है। एक कविता में पद्मावत जी लिखे हैं, यदि गंगा जी नहीं होती इसके ललाट पर तो इस गंगा को कौन पूछता है। गंगा न कपड़ा है न अलंकार है कुछ नहीं, पर ये कहीं चला के किया है इस देवता ने, जो संसार का सार है भगवान का चरण कमल, उसके धोन को जल को अपने जटा में रख लिया। दुनिया का सारा वैभव एक तरफ कुछ भी हो, उसके आगे गंगा जी के आगे कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान शिव है, गंगा जी को धारण करने से शिव हो गए। ये भागवत में हूबहू शब्द है शिव शिवो भूत, शिव जी भगवान के चरण कमल के जल को धारण करने पर तब शिव जी हो गए, नहीं तो पूरा शिव रहते। शिव मंगलमय हो गए। तो जिसके चरण कमल के जल को धारण करके शिव जी परम मंगल में हो गए, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तो शिव जी परम मंगल में है, इनका दर्शन इनका नाम दूसरों का अमंगल दूर करता है कल्याण करता है। तो भगवान शिव की महिमा भगवान के चरण कमल के संपर्क से है। तो जिनके सुमंगल चरण कमल को और जिनके सुंदर स्वरूप को देखने की लालसा वाले विमुक्त संग मुनिजन सुसाधु और समस्त जीवों का हित करने वाले सबके प्रति कृपालु मन में जाकर के अलोक व्रत चरणती अलोक व्रत का आचरण करते हैं। और लोक व्रत मतलब लोकातीत भागवत धर्म का अनुष्ठान करते आचरण करते। यदि कोई लोग भगवान को देखना चाहते हैं भगवान के चरण कमल को देखना चाहते हैं तो ये लोग भागवत धर्म का आचरण करते हैं। श्रीपद जी गोस्वामी जी लिखते हैं अलोकम लोकातीत भागवत व्रतम, और उसको अव्रण जिसमें कोई भी दोष नहीं है, भागवत धर्म में कोई दोष नहीं कोई त्रुटि है ही नहीं। धवन निमिल निवाले तय पतक न स्खले दिया, इस श्लोक को उद्धृत किए हैं। भागवत धर्म ऐसा है कि इस पथ पर स्थित होकर कोई दोनों नेत्र बंद करके दौड़ेगा तब भी न गिरेगा न स्खलित होगा। दोनों नेत्र क्या है टीका में बताएंगे, श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र है। कोई व्यक्ति वेद को भी नहीं जानता है ठीक से, स्मृतियों को भी नहीं जानता है, लेकिन यदि वो भगवान का नाम जपता है तो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की पूजा करता है, तो वह व्यक्ति एक प्रकार से वैसा है कि आंख बंद करके दौड़ रहा है इस पथ पर। तो आंख बंद करके दौड़ने पर भी न स्खलित न पते, न स्खलित होगा न गिरेगा, त्रुटि नहीं। इसलिए इसी जिसको अव्रण अव्रण व्रत करते, जिसे व्रण नहीं है, छिद्र नहीं, घाव नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट है। इस भागवत धर्म में थोड़ा भी कोई आचरण करे, जैसे मान लीजिए और कुछ नहीं कर रहा है, केवल कृष्ण को प्रणाम भी करे, तो वह निश्चित मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। केवल प्रणाम करने मात्र से, केवल नामोच्चारण मात्र से, केवल चिंतन मात्र से या उनके श्रवण मात्र से वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। देखिए अनेक विशेषण दे रहे हैं गजेंद्र जी, कौन लोग हैं भगवान को देखने की इच्छा करते हैं। पहले तो वो विशेषण दे रहे हैं, विमुक्त संगह जो पुत्र दार आदि आसक्तियों से बिल्कुल मुक्त है। और श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अर्थ करते हैं, मुक्त का अर्थ होता है जो इन सब आसक्तियों से मुक्त है, और विमुक्त भक्तों को कहते हैं जो विशेष मुक्त है। जो विशेष मुक्त है उनके संगी, उनके संग विमुक्त संग, विमुक्त मतलब भगवत भक्त, और विमुक्त संग विमुक्त जन का भक्तों का जो संग करते हैं उनमें भगवान को देखने की लालसा का उदय होता है। मुनय मननशील सुसाधव अत्यंत सदाचार पराये सुसाधु भूतात्म भूता, भूत मन जीव, जीवों के प्रति आत्मभूता, जीवों से अपना अभेद देखते हैं, व्यवहार में उतना प्रेम करते हैं जीवों से जितना अपने से प्रेम करते हैं, और सुहृद सबके प्रति दयालु, सबके प्रति स्नेह करने वाले। ऐसे वैष्णव जब वन में जाकर के बने और व्रणम व्रतम चरन्ति, भागवत धर्म का आचरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वे भगवान को देखते हैं। गजेंद्र जी के कहने का आशय ये, कौन देख सकता है भगवान को? पहला तो गुण है दिदृक्षा, देखने की लालसा तो होनी चाहिए ना। दिदृक्षा कहते हैं देखने की उत्कट लालसा। जो व्यक्ति भगवान को देखना चाहता है कितना सुंदर है, उनको अखबार में भरना चाहता है या उनकी सेवा करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो भागवत धर्म का आचरण करे। भागवत धर्म के आचरण में कवि जी बताए हैं कि श्रीमन सुभद्राय रथंग पाणे कर्म, श्रीमन सुभद्राणी रथंग पाणे जन्मानि कर्म निचयानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरे दसंग। यही है भागवत धर्म। और श्लोकों की टीका करते हुए बताया गया है कि सीधा साधा भागवत धर्म बताइए क्या है, क्या भागवत धर्म है जिसको अलोक व्रत कहा गया। ये लोक से भिन्न है, वर्णाश्रम धर्म से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए अलोक व्रत, लोक मैंने लोग, लोगों का जो व्रत है, खाना कमाना, परिवार में रहना, चाहिए करना वो करना, स्वर्ग की इच्छा करना या मुक्त होने की इच्छा करना, ये धन कमाने की इच्छा करना, ये है लोक व्रत। यही है लोक व्रत। लोग इसी व्रत में लगे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, वो करो, ये कमाओ, ये खाओ, ये करो, मर जाओ, यही लोक व्रत। और लोक व्रत क्या है? दुनिया से प्रेम नहीं करना, भगवान से प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करना, इसको अलोक व्रत कहते हैं। तो अलोक व्रत का सार क्या है? श्रीवन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरे दसंग। यही है भागवत। सुभद्र भगवान रथांग पाणी के मंगलमय नादों को, लीलाओं को, गीतों को, पदों को, जो लोक भाषा में भी है, प्रसिद्ध है, उड़िया में है, ब्रजभाषा में है या बंगाली में है, गीता की नामी तदर्थ का भी श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके वेदे, वेद में तो है ही भगवान के नाम, जैसे महामंत्र है, वैदिक मंत्र है, वेद का यह मंत्र है, लेकिन लोके, लोक में भी गीता नी नामानी तदर्थ का नी, लोक में भी बहुत से गीत प्रसिद्ध है भगवान के विषय में। इनको गायन विलज्जो विचरे दसंग, इनको लाज छोड़ करके गाते हुए जो विचरण करता है, ये विचरण करना चाहिए, ये है भागवत धर्म का सार। तो श्रीमद भागवतम सुनना, पढ़ना और रात दिन भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान का नमस्कार करना, यह है भागवत धर्म मुख्य। इसको अलोक व्रत कहते हैं, लोक से अतीत व्रत है, भिन्न व्रत है। तो जो भगवान को देखना चाहते हैं वे वन में जाकर अलोक व्रत का आचरण करते हैं। वन शब्द से तत्पर्य है ऐसा स्थान जहाँ भगवान के श्रवण कीर्तन आदि में बाधा न हो, वो है वन। आज के युग में जहाँ सुविधा है, जहाँ भक्त भगवान की भक्ति कर सके ठीक से, वही है वन। जन संघट से दूर, जहाँ विविध प्रकार के विचार बातें हैं, डिस्टर्बेंस है, वहां से शून्य जगह में जा करके भगवान के मंदिर में या भगवान के धाम में, वृंदावन में भगवान का श्रवण कीर्तन करना, केवल उनके चक्कर में रहना और दिदीक्षा उन्हीं को देखने की लालसा मन में उफान मार रही है। तो जिनको देखने की लालसा होती है, पुत्रदान आदि की आसक्ति छोड़ देते हैं और सुंदर आचरण कर सुसाधु सुशील सुंदरशील वाले हो जाते हैं, भूतात्म होता है, दूसरे जीव के सुख दुख को अपने दुख सुख के समझ समझते हैं, सबका उपकार करते हैं, सबके प्रति दया करते हैं और भागवत धर्म का आचरण करते हैं। निदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोक व्रतम वृणम्बने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गति। वही प्रभु श्री कृष्ण मेरी गति हो। गति का अर्थ होता है गति गंतव्य, गंतव्य को भी गति कहते हैं। गति के दो तीन अर्थ है, कई अर्थ है, लेकिन गति का अर्थ है एक तो स्पीड चलना, और गति का अर्थ गंतव्य भी होता है, डेस्टिनेशन। यह डेस्टिनेशन अर्थ है गंतव्य। वही हमारे गंतव्य हो, हम उन्हीं को प्राप्त करें जिनके सुमंगल चरण कमल को देखने के लिए साधु जन बल में भागवत धर्म का आचरण करते हैं, वही प्रभु हमारे गंतव्य हो। इस ग्राह पास से छूटना इनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। गजेंद्र जी का उद्देश्य है कि मैं भगवान के पास चला जाऊं, उनका नित्य सेवक बन करके उनकी सेवा करूं, यही है गति। सुहृदः समे गति, वही हमारे गंतव्य हो, वही हमारे जीवन के लक्ष्य हो। इस प्रकार गजेंद्र जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दिदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोक व्रतम वृणम् वने भूतात्म भूतः सुहृदः समे गतिः। यदि भगवान को देखना है तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इससे भगवान मिलेंगे। दिदृक्ष देखने की लालसा जिनको है, ये लोग भागवत धर्म का आचरण करते हैं। बहुत सुंदर उत्साहदायी श्लोक है। पहले तो उन्होंने कहा कि नजस्य देवा ऋषयः पदम विदुः, देवता और ऋषि भी जिनको नहीं जान सकते, न गंतुम ईर्तुम अर्हत, न जान सकते हैं, पर तो कहते हैं नहीं जानते हैं। न जस देवा ऋषि पदम विदु, जस पदम देवा ऋषि न विदु, तो जंतु अर्वाचीन सीधा सीधा स्वामी जी लिखते अर्वाचीन, आज का जन्म हुआ तो मनुष्य क्या भगवान के विषय में जानेगा और बोलेगा। जो लोग परंपरा में नहीं है वैष्णवों की, भगवान के स्वरूप को जो ठीक से नहीं जानते हैं, उनकी लीलाओं को, वे लोग कुछ प्रवचन करते हैं तो सियार के हुआ हुआ जैसा समझना चाहिए, ये फालतू आकर के बकरा है, ये भगवान का कोई ज्ञान है नहीं, बस प्रवचन कर रहा है। और उसमें वो तो सियार राज है ही, हुआ हुआ कर रहा है, उसमें बैठे हुए सारे सियार चुपचाप ऐसे सुनते रहते, कोई भगवान के रूप का वर्णन नहीं है, लीला का वर्णन नहीं, तो कोई प्रवचन है क्या, तो फालतू बकवास है। और इसमें बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का समय बेकार जाता है। भगवान के विषय में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग दिदृक्षु हुए और भगवान को देखे, तो देख करके फिर उनका वर्णन भी किए हैं, तो उस वर्णन की परंपरा में जो आते हैं तो वे लोग भगवान को देख सकते हैं, भगवान के विषय में बोल भी सकते हैं। भगवान के विषय में बोलने में दिक्कत ये है कि लोग पहले के आचार्यों की बोली हुई बातों को न बोलकर अपनी बात जब बोलते हैं तो वही गड़बड़ चालू हो जाता है, गड़बड़ चालू हो जाता है। यदि पहले के आचार्यों ने भगवान का जैसा वर्णन किया है वैसा वर्णन किया जाए तो आसानी से जनता समझेगी और सबको शांति मिलेगी, ज्ञान होगा। इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने तरफ से, अपनी ओर से कुछ जोड़ना ही नहीं, टोटल ही कल्पना करना अपनी ओर से। तुलसीदास जी उदाहरण दिए हैं रामचरितमानस में, मान लीजिए बहुत विशाल नदी है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है या नर्मदा जी है, बड़ी बड़ी नदी है और बरसात का दिन है, पानी बहुत बाढ़ छाया, बंदे छाई हुई है, बाढ़ छाई और उसको कोई पार करना चाहता है, तो यदि राजा के द्वारा बनाए हुए, सरकार के द्वारा बनाए हुए पुल का, ब्रिज का कोई आश्रय है, सेतु का, तो उस पर चढ़ करके चींटी भी पार हो जाएगी, है ना? अगर पुल का आश्रय है उस पर चढ़ करके धीरे 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 चली जाएगी, पार हो जाएगी, परंतु उस सेतु का कोई आश्रय न ले, कहेंगे नहीं मैं डायरेक्ट पार करूंगा तो बड़ा से बड़ा हाथी भी बह जाएगा उसमें, पार नहीं पा सकते। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तहिमग चलत सुगम महिमाए, अति अपार जे सरित बरा, जौ बिरप सेतु कराही, चढ़ी पिपील को परम लघु, विदुषम पार अंतर। पीपील का चींटी पार हो सकती है पर हाथी भी डूब जाएगा अगर रास्ते से न चले तो। मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई, मुनियों ने श्री नारद जी श्री सुखदेव गोस्वामी आदि ने भगवान की कीर्ति का गान किया है, परंपरा है कि ऐसे गान किया जाता है, भगवान का ऐसे वर्णन होता है, ऐसे अनुभव होता है, ऐसे दर्शन होता है, तो उस परंपरा में उस सेतु पर जो चलते हैं तो आसानी से भगवान को समझ जाते हैं और भगवान का वर्णन करते हैं, बाकी लोग उसी धारा में डूब करके मर जाते हैं। नदी की विकराल धारा में कई लोगों को सुना जाता है कि नौका पलट गई, ये हो गया, वो हो गया, डूब गया। तो भगवान का ठीक से ज्ञान करने के लिए और उनको उनका दर्शन पाने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यही है अलोक व्रत। आप लोगों ने इस अलोक व्रत का यहाँ आयोजन किया, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और मंदिर में भक्त तो अलोक व्रत में रहते ही है, भगवान का कीर्तन करना, आरती करना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।